इज़राइल और यूदा विषयक भविष्यवाणियां। समारिया का पतन, अध्याय 28। एफ्राइम के शराबियों के गर्वीले मुकुट को धिक्कार और उसके अलंकृत वस्त्रों के मुरझाए हुए फूलों को। तुम उस उपजाऊ घाटी के शिखर पर मदिरा से मत्त होकर लड़खड़ाते हो, देखो प्रभु का एक बलशाली शूरवीर आ रहा है। वो ओलों की वर्षा, विनाशक तूफान, प्रलय ले आने वाली आंधी, सब कुछ बलपूर्वक भूमि पर पटकेगा। एफ्राइम के शराबियों का गर्विला मुकुट भूमि पर रौंदा जाएगा। उपजाऊ घाटी के शिखर पर उनके अलंकृत वस्त्रों के मुरझाए हुए फूलों के साथ ऐसा ही होगा जैसा समय से पहले पके अंगूर के साथ होता है। जो उसे देखता है वो उसे तोड़कर खा जाता है। उस दिन सर्वशक्तिमान प्रभु अपनी अवशिष्ट प्रजा के लिए एक महिमामय किरीट और सुंदर माला होगा। वो न्यायकर्ताओं के लिए न्याय का स्रोत होगा और शत्रुओं से नगर की रक्षा करने वालों के लिए वीरता का। मद्यपों के विरुद्ध। याजक और नबी भी अंगूरी पीकर मत्त है, वे मद्यपान के कारण झूम रहे हैं। वे सब के सब लड़खड़ाते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वे अद्भुत दृश्य देखकर भटकते हैं और निर्णय सुनाते समय लड़खड़ाते हैं। मेजें घृणित वमन से भरी हैं, कोई जगह गंदगी से खाली नहीं। वो किसको सिखाने चला, वो किसे अपना संदेश सुनाना चाहता है? क्या दूध छुड़ाए बच्चों को जिन्होंने अभी अभी स्तनपान छोड़ा है? क्योंकि वो कहता है, आदेश पर आदेश, आदेश पर आदेश, नियम पर नियम, नियम पर नियम, इधर कुछ उधर कुछ। प्रभु निश्चय ही विदेशियों की एक अपरिचित भाषा द्वारा इस राष्ट्र को संबोधित करेगा। उसने उनसे कहा था, यही विश्वास का स्थान है, थके मांदे लोग यहां विश्राम करें, यहां शांति प्राप्त होगी। किंतु वे सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए प्रभु उनसे ये कहेगा, आदेश पर आदेश, आदेश पर आदेश, नियम पर नियम, नियम पर नियम, इधर कुछ उधर कुछ, जिससे वे पीछे हटकर गिर जाएंगे, घायल हो जाएंगे, जाल में फंसकर पकड़ लिए जाएंगे। इसलिए निंदकों, जो यरूशलेम में इन लोगों पर शासन करते हो, तुम प्रभु का संदेश सुनो। तुम कहते हो, हमने मृत्यु के साथ समझौता कर लिया और अधोलोक के साथ संधि कर ली है। जब जब महाविपत्ति टूट पड़ेगी तो वो हम लोगों तक नहीं आ पाएगी, क्योंकि हमने झूठ को अपना आश्रय और कपट को अपना शरण स्थान बना लिया है। फिर भी प्रभु ईश्वर ये कहता है, देखो मैं सियोन में सुदृढ़ नींव के रूप में कसौटी पर कसे हुए बहुमूल्य कोने का पत्थर रखता हूं। जो इस पर भरोसा रखता है वो कभी निराश नहीं होगा। न्याय मेरा मापदंड होगा और सधर्म मेरा साहुल। ओले की वर्षा झूठ के आश्रय को बढ़ा देगी और जलधारा तुम्हारे शरण स्थान को। मृत्यु के साथ तुम्हारा समझौता टूट जाएगा और अधोलोक के साथ तुम्हारी संधि नहीं टिकेगी। जब विपत्ति तुम पर टूट पड़ेगी तो तुम उसमें बह जाओगे। जब जब वो आ पड़ेगी तो वह तुमको डुबा कर ले जाएगी और हर सुबह दिन रात आती रहेगी। जब लोग ये संदेश समझेंगे तो वे आतंक से भर जाएंगे। पलंग इतना लंबा नहीं होगा कि तुम पैर फैलाकर सो सको, चादर इतनी छोटी होगी कि वो तुम्हारा शरीर नहीं ढक सकेगी। प्रभु उठकर खड़ा हो जाएगा जैसा कि उसने परासीम पर्वत पर किया था। वो क्रोध के आवेश में उठेगा जैसा कि उसने गिबोन की घाटी में किया था। वो अपना अद्भुत कार्य पूरा करेगा, वो अपनी अलौकिक योजना संपन्न करेगा। अब तुम उपहास करना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी बेड़ियां और कस दी जाएंगी। क्योंकि मुझे प्रभु की ओर से पता चला कि उसने तुम्हारे देश के विनाश का आदेश दिया है। मेरी बात अच्छी तरह सुनो, मेरे शब्दों पर ध्यान दो। क्या किसान हर समय हल चलाता और हेंगा फेरता रहता है? क्या वो जमीन बराबर करने के बाद उसमें सौंफ और जीरा नहीं लगाता है? क्या वो उनकी अपनी अपनी जगह पर गेहूं, जौ और बाजरा नहीं बोता और किनारे पर घटिया अनाज? उसे ये शिक्षा ईश्वर से प्राप्त है जो उसे काम का सही ढंग सिखाता है। सौंफ की दौरी पशुओं से नहीं की जाती और जीरे पर गाड़ी का पहिया नहीं चलाया जाता, बल्कि सौंफ छड़ी से और जीरा सोटे से झाड़ा जाता है। रोटी बनाने के लिए गेहूं पीसा जाता है, इसलिए लोग देर तक उसकी दौरी नहीं करते। जो पशुओं से उसकी दौरी करते हैं वे इसका ध्यान रखते हैं कि वो रौंदा नहीं जाए। अपूर्व परामर्शदाता और अत्यंत कार्यकुशल सर्वशक्तिमान प्रभु की प्रेरणा से किसान को ये शिक्षा प्राप्त है।